హరే కృష్ణ. ఫాలోయింగ్ లెక్చర్ బై ఎస్ గ్రేస్ రుక్మిణి కృష్ణ ప్రభుజీ శ్రీమద్ భాగవతం 4th Canto 24 చాప్టర్ వర్స్ నంబర్ 40 ఆన్ 5th of May 2007. టాపిక్ ఈస్ గోయింగ్ టు కృష్ణ త్రూ హోలీ నేమ్.
आप अपनी दिव्य वाणी
शब्दों को
प्रसारित करके प्रत्येक वस्तु का
वास्तविक अर्थ
प्रकट करने वाले हैं।
आप
भीतर
बाहर
सर्व्याप्त
आकाश है
और इस लोक में
तथा
इससे परे
किए जाने वाले
समस्त पुण्य कर्मों के
परम लक्ष्य है।
अतः
मैं आपको
पुनः
नमस्कार करता हूँ।
वैदिक प्रमाण शक धर्म कहलाता है। ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमारी अपूर्ण इंद्रियों के निरीक्षण से परे हैं, किंतु शब्द का प्रमाणिक साक्ष्य पूर्ण है। वेद शब्द भ्रम कहलाते हैं, क्योंकि वेदों का प्रमाण साक्ष्य ही परम ज्ञान है। इसका कारण है कि शब्द भ्रम या वेद भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु शब्द भ्रम का वास्तविक सार तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन है। इस दिव्य ध्वनि के उच्चारण से भौतिक तथा आध्यात्मिक सारी वस्तुएं प्रकट होती हैं। यह हरे कृष्ण महामंत्र श्री भगवान से अभिन्न है। प्रत्येक वस्तु का अर्थ वायु के माध्यम से प्राप्त शब्द ध्वनि से प्रकट होता है। यह ध्वनि चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, किंतु बिना शब्द ध्वनि के किसी बात का कोई अर्थ नहीं प्रकट होता। वेदों में कहा गया है, अंतः बहिश्च तत् सर्वं व्याय नारायणश्च। नारायण सब व्यापी है और वह भीतर तथा बाहर स्थित रहता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में 13.34 इस प्रकार हुई है, यथा प्रकाश यज्ञेका कृष्णम लोकम एवं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। हे भरतवंशी, जिस प्रकार इस ब्रह्मांड को अकेला सूर्य प्रकाशित करता है, उसी प्रकार जीवात्मा तथा परमात्मा चेतना द्वारा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हैं। दूसरे शब्दों में आत्मा तथा परमात्मा की चेतना सर्वव्यापी है। आत्मा अपनी सीमित चेतना से संपूर्ण भौतिक शरीर में व्याप्त है और भगवान की परम चेतना सारे ब्रह्मांड में व्याप्त रही है। क्योंकि आत्मा शरीर के भीतर स्थित है, अतः चेतना सारे शरीर में व्याप्त रहती है। इसी प्रकार परमात्मा या श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, अतः हर वस्तु व्यवस्थित रहती है। मया दक्षिण प्रकृति सूर्यते सचराचरम। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य कर रही है और समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। भगवद्गीता 9.10। अतः शिव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे कृपालु हों, जिससे केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही प्रत्येक वस्तु को समझा जा सके। इस प्रसंग में अमुष्मय शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उच्च लोक प्राप्त करने के बाद सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य इंगित होता है। जो कर्मी है वह अपने पूर्व कर्मों के फल के अनुसार स्वर्ग प्राप्त करते हैं और ज्ञानियों को भी वांछित फल मिलता है, किंतु अंततः भक्त ही जो साक्षात भगवान की संगति चाहते हैं वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान को श्रीमद् भगवत गीता में 10.12 भगवान को पवित्रम परमम कहा गया है। इसकी पुष्टि इस श्लोक में होती है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि श्री कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बाल सामान्य जीव नहीं थे। विभिन्न जन्मों में अन्य पुण्य कर्मों को सिंचित करने से ही भगवान का साहचर्य प्राप्त होता है। चूंकि पवित्र आत्मा ही उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, अतः वे परम शुद्ध हैं। ओम हरे कृष्ण।
और सबका स्वागत है आज की भागवत कक्षा में। आप कृपया भक्त लोग सब थोड़ा आगे आ सकते हैं, पीछे बैठे हुए लोग अंदर आ सकते हैं। तो चौथा स्कंध का 24वें अध्याय का 40वां श्लोक है, अर्थ लिंगाय नभसे नमो अंतर बहिरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मय गुरु वर्चसे। हे भगवान, आप अपनी दिव्य वाणी को प्रसारित करके प्रत्येक वस्तु का वास्तविक अर्थ प्रकट करने वाले हैं। आप भीतर बाहर सर्वव्याप्त आकाश हैं और इस लोक में तथा इससे परे किए जाने वाले समस्त पुण्य कर्मों के परम लक्ष्य हैं। अतः मैं आपको पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। तो भगवान शिव की बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं चल रही हैं और इस श्लोक में भगवान शिव ये व्याख्या कर रहे हैं कि किस ढंग से कैसे भगवान सभी पुण्य कर्मों के परम लक्ष्य हैं और इस परम लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कह रहे हैं कि आप अपनी दिव्य वाणी को प्रसारित करके प्रत्येक वस्तु का वास्तविक अर्थ प्रकट करने वाले हैं। अर्थ लिंगाय नभ से, कि आप प्रकट कर रहे हैं तात्पर्य को, प्रत्येक वस्तु के तात्पर्य को नभ से, आकाश को माध्यम बना के यानी कि शब्द होने के द्वारा। और नमो अंतर बहिरात्मने, आप अंदर भी स्थित हैं और बाहर भी स्थित हैं। नमो पुण्याय लोकाय, जितने पुण्य कर्मों के आप परम लक्ष्य हैं। अमुष्मे भूरि वर्चसे, और इससे परे किए जाने वाले समस्त पुण्य कर्मों के परम लक्ष्य हैं। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में भी सूत गोस्वामी जी नैमिषारण्य में इकट्ठे ऋषियों को बताते हैं कि वासुदेवा परा वेदा, वासुदेवा परा मखा, वासुदेवा परा योगा, वासुदेवा परा क्रिया, वासुदेवा परमं ज्ञानम, वासुदेवा परमं तपा, वासुदेवं परो धर्मा, वासुदेवा परागति। कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी वैदिक ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हैं, भगवान श्री कृष्ण ही सभी यज्ञों के द्वारा जानने योग्य हैं, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही सारे कर्मकांड उत्पन्न होते हैं, भगवान श्री कृष्ण ही परम धर्म है, भगवान श्री कृष्ण ही परम तपस्या के द्वारा जाने जा सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण ही परम गति है। तो सभी पुण्य कर्मों के जो परम लक्ष्य हैं वो भगवान है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं यद क्रोशी यद अशनासी यद जुदोषी ददासी यद, कि अब जो कुछ भी दो, जो कुछ भी अर्पण करो, मुझे अर्पण करो। आजकल एक बहुत ही तथा कथित मायावादी गुरु है, तो जब हम भगवदगीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो उनसे, उनके किसी शिष्य से संपर्क हुआ, तो वो कह रहे थे कि हमारी संस्था की सबसे अच्छी बात यह है कि हम दान बिल्कुल नहीं मांगते। सबसे अच्छी बात है, हम बिल्कुल दान नहीं मांगते। तो भगवान को दान की क्या आवश्यकता है, भगवान तो देने वाले हैं। तो देना है तो गरीब बच्चों को दो, उनको खाना खिलाओ, उनको कपड़े दो, ये देना बोलता है। भगवान को देकर क्या है? तो ये हमारे संस्था की सबसे अच्छी बात है कि हम दान नहीं लेते। तो उनको मालूम ही नहीं है कि जो दान का लक्ष्य है वो क्या है, सारे पुण्य कर्मों का लक्ष्य है वासुदेव, उसको जानते नहीं। पुण्य कर्मों में लगे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, ये पुण्य कर्म है, लेकिन ये कृष्ण की तरफ केंद्रित नहीं है। तो उससे हम अपनी परम गति परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो बड़े गर्व से वो बोलते हैं कि हमें गर्व से कहना चाहिए कि हमारे यहाँ पे हम सुविधा देते हैं भक्त जीवों को कि अपना शुद्धिकरण करें, कि जो कुछ वो धन अर्जन कर रहे हो भगवान को अर्पित करें। ये बहुत बड़ी सेवा करने का एक अवसर है। तो वो लोग कहते नहीं, ये हमारे यहाँ की पॉजिटिव पॉइंट है कि हम दान नहीं करते। तो भगवान शिव जी यहाँ कह रहे हैं कि आप परम लक्ष्य हैं, आप पुण्य कर्मों के परम लक्ष्य हैं और आप परम पवित्र हैं। शंकराचार्य ने कहा है नारायणो परो व्यक्त्या, कि भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत से बिल्कुल परे हैं। अब ऐसी वस्तुएं, ऐसे विषय वस्तुएं जो कि इस भौतिक जगत से परे हैं, उनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं? तो उनके विषय में जो प्रमाण है वो सबसे प्रमाणिक प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण। केवल वेदों के द्वारा ही हम भगवान के विषय में जान सकते हैं, क्योंकि वेद स्वयं भगवान की वाणी है। यहां पे कहा गया है कि यह हरे कृष्ण महा शब्द का प्रमाणिक साक्ष्य पूर्ण है। वेद शब्द हम कहलाते हैं, इसका कारण यह है कि शब्द ब्रह्म या वेद भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि जो वेद हैं वो तीन गुणों से परे हैं, वो अपौरुषीय हैं। वेद किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। बताया जा रहा है कि सारे के सारे वैदिक शास्त्रों का जो सार है वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। जैसे कि ब्रह्मा जी ने कल सत्र में बताया, इति शोरशकम नामनम कली कलमश नाशनम ना तो परो तरफाए सर्व वेदेषु दुष्यते। सारे के सारे वेद उन्होंने छानबीन कर ली, उसके बाद एक हरे कृष्ण महामंत्री प्राप्त हुआ। भगवान गीता में कह रहे हैं वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, कि केवल वेदों के माध्यम से ही सब वेदों का लक्ष्य यह है मुझे जानना, और सब वेदों का सार है हरे कृष्ण महामंत्र, यानी कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा ही हम भगवान श्री कृष्ण को जान सकते हैं। इसीलिए बताया गया हरे नाम एव केवलम, कि केवल हरि नाम के माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, केवल वेद के माध्यम से ही हम भगवान के बारे में जान सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं, और सारे वेदों का सार है ये शब्द ध्वनि हरे कृष्ण महामंत्र। श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री गौर निताय जी की। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में गए तो वहां पे प्रकाशानंद सरस्वती जो मायावादी सन्यासी थे अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहां पे आए हुए थे, तो वहां पे एक ब्राह्मण ने प्रकाशानंद सरस्वती के आगे चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किया कि चैतन्य महाप्रभु ऐसे सन्यासी हैं जो हरि नाम लेते हैं, नाचते गाते हैं। तो जब ये सुना तो प्रकाशानंद सरस्वती हंसने लगे, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, ये कौन से सन्यासी है, ये तो भावुकता है। सन्यासी का अर्थ ये नहीं होता कि भावुक होकर सड़कों पर नाचे, सन्यासी तो वेदांत का अध्ययन करते हैं। तो उस ब्राह्मण को बहुत बुरा लगा, तो ब्राह्मण आके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा और कहा कि ये जो मायावादी सन्यासी है ये क्यों नहीं कृष्ण का नाम ले पाते। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मायावादी कृष्ण अपराधी, ये कृष्ण के अपराधी हैं। और फिर महाप्रभु ने पद्म पुराण का वो श्लोक विदित किया, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण मुक्तो नित्य शुद्धो अभिनत्व नाम नामी, कि ये जो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, कि ये नाम है ये हरिनाम प्रभु है, अभिनत्व नाम नामी, ये नामी से अभिन है, क्योंकि मायावादी कृष्ण के अपराधी हैं, इसीलिए वो हरिनाम भी नहीं ले सकते। फिर भी महाप्रभु ने कृपा करके उनका उद्धार करने के लिए महाप्रभु वहां पे गए, और फिर वहां बैठे जहां पे सब लोग अपना पद प्रक्षालन करते हैं, पैर धोते थे, महाप्रभु के शरीर से दिव्य कांति निकल रही थी। तो प्रकाशानंद सरस्वती आए, उन्होंने उनको उठाया और अपने पास आए, उनको मंच पे बिठाया और कहा कि आप तो साक्षात नारायण प्रकट हो रहे हैं, आपके शरीर से इतनी दिव्य कांति प्रकट हो रही है, क्या आप नारायण हैं और फिर क्यों इस तरह पागलों की तरह आप हरि नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं। तो अब सब जानते हैं कि महाप्रभु ने क्या कहा, प्रभु कहे सुन श्रीपाद इहर कारण गुरु मोरे मूर्ख देखी करिल शासन, कि प्रभु ने कहा कि सुन श्रीपाद इहर कारण, इसका केवल एक ही कारण है, क्या कारण है, गुरु मुरा मूर्ख देखी, मेरे गुरु ईश्वर परिपाद ने मुझे कहा देखा मूर्ख रूप में देखा और कहा और मेरे ऊपर शासन किया, बोले मूर्ख तुम्हें तोमा नाही वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार, कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारा वेदांतों के ऊपर और कोई अधिकार नहीं है, केवल कृष्ण मंत्र का हमेशा जप करो, यही सारे मंत्रों का सार है। कृष्ण मंत्र हैते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्ण रे चरण, कि कृष्ण का नाम लेते ही सारे के सारे संसार का शुद्धिकरण हो जाएगा, और कृष्ण नाम पाते ही हमें कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होगी। नाम बिनु काली काले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सर नाम यही शास्त्र मर्म, कि इस कलयुग में और कोई धर्म नहीं है, केवल हरि नाम का जप है और ये सारे के सारे शास्त्रों का मर्म है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, जो कि निमाई पंडित के रूप में विख्यात थे, बड़े बड़े पंडितों को उन्होंने हरा दिया, अब वही निमाई पंडित कह रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं, मेरा वेदांत के ऊपर और कोई अधिकार नहीं है, सर्व मर्म सार यही है कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं हम सबको सिखाने के लिए कि ये वैदिक अध्ययन का केवल सार यही है कि हम भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर सकें। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध में बताया जा रहा है कि शक भ्रमणे निष्णातम ना निष्णयात परे यदि श्रमस्तस्य श्रम फलम अधेनो में वह रक्षता। कि शक भ्रमणे निष्णातम, सारे के सारे वैदिक शास्त्रों में बहुत श्रद्धा है, ना निष्णयातम परे यदि, लेकिन कृष्ण के प्रति कोई श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है, तो ऐसे वैदिक शास्त्रों में क्या मतलब हुआ, श्रमस्तस्य श्रम फलम, इसका जरा पूरा का पूरा जो फल है वो क्या है, केवल श्रम। और ये श्रम कैसा है, उस उन मूर्खों को जैसा श्रम है, अध्ययन में वह रक्षता, ऐसे गाय की रक्षा करना जो दूध नहीं देती, तो क्या फायदा, ऐसे गाय का हम पालन करें जो दूध नहीं देती, सारे के सारे वैदिक शास्त्र पढ़ लिए लेकिन हमने भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं की, तो ये केवल श्रम है। और इसी बात को चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य भागवत में बताया कि हे न कृष्ण नाम यार नहीं गति मती पादिया और सर्व शास्त्र ताहर दुर्गति, कि अगर सबने सारे शास्त्रों को पढ़ लिया है लेकिन उसका भगवान नाम के प्रति कोई रुचि उत्पन्न नहीं हुई, ताहर दुर्गति, उसकी दुर्गति होगी। और फिर ये बताया गया है जो वैदिक शास्त्रों को अध्ययन करके और वैदिक शास्त्रों को सिखाता है पढ़ाता है बिना कृष्ण के नाम के, तो उसको बोला गया है गधा, गधे के समान है, सारे के सारे शास्त्रों को भार के रूप में उठा के जा रहा है, क्योंकि सारे शास्त्रों का सार ही यही है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। तो कई बार बाहर बड़े बड़े पंडित मिलते हैं, जब हम जा गए थे यहाँ पे कुंभ के मेले में, बड़े बड़े पंडित, प्रगाढ़ पंडित, संस्कृत में बड़े बड़े श्लोक बोल रहे हैं लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं कर रहे, तो वो सोचते हैं कि हम लोग बहुत उत्कृष्ट हैं और ये लोग अभी मूर्ख हैं, ये केवल नाचते कूदते रहते हैं। लेकिन स्वयं भगवान ने यही कार्य किया कि वाराणसी की गली में वो नाचे कूदे निमाई पंडित होने के बाद भी। तो ये सारे मंत्रों का, सारे वेदों का यही सार है, यही हमें कृष्ण को पास ले जाएगा। श्री रूप गोस्वामी जी नाम अष्टकम में बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं, तो उनकी पहली प्रार्थना रूप गोस्वामी जी जानते हैं कि ये हरि नाम इतने कृपालु हैं कि हम सब बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए इस भौतिक जगत में प्रकट हुए हैं। श्रीला भक्ति सांसदी ठाकुर महाराज कहते हैं कि हम लोग तो इस भौतिक जगत में हैं, आध्यात्मिक जगत के विषय में कैसे जानेंगे, तो आध्यात्मिक वस्तुओं को विषयों को तीन माध्यम के द्वारा प्रकट किया जाता है, वो है भगवान का नाम, भगवान के अर्च विग्रह और भगवान के प्रतिनिधि गुरु। गुरु अर्च विग्रह और भगवान नाम के द्वारा ही हम भगवान के बारे में जान सकते हैं, तो इन सब में सबसे कृपालु भगवान नाम है। चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने शिक्षाष्टकम में अर्च विग्रह की पूजा करने को नहीं कहा, उन्हें क्या कहा कि केवल हरि नाम। और जो नवदा भक्ति के भी अंग हैं, नवदा भक्ति के सारे अंग नाम उच्चारण पर ही केंद्रित है, अगर हम नाम का उच्चारण कर रहे हैं तभी हम अर्चना कर सकते हैं, तभी स्मरण हो सकता है, तभी पाद सेवन। तो केवल नाम दार मध्य नाम संकीर्तन सबसे जो श्रेष्ठ है वो है नाम संकीर्तन। तो अब पहले ही नाम अष्टकम में बहुत सुंदर रूप गोस्वामी जी बोले हैं, निखिल श्रोते मौलिरत्न माला द्योते निराजित पाद पंक जानता आई मुक्त कोलेर उपाश्यमानाम परितस्व त्वम हरि नाम संश्रयामि। तो कह रहे निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला, ओ हरि नाम, निखिल श्रुति जितनी भी श्रुतियां हैं, जितने भी उपनिषद हैं, मौलि रत्नमाला जो कि एक हार के समान है, बहुत ही अच्छे अच्छे हीरों के द्वारा जड़ित ये रत्नों की जो माला है, वो सब ये जो जितने उपनिषद हैं वे सब सुंदर रत्नों से जड़ित माला के समान है, लेकिन ये कार्य क्या कर रहे हैं, द्युति निराजित पद पंक जानता, वो हरिनाम प्रभु के चरण कमलों के अंत, उनके जो नाखून हैं उनकी वो सेवा में लगे हुए हैं। जितने भी उपनिषद हैं उनकी सुंदर जो माला है वो हरिनाम प्रभु के चरण कमलों के नाखनों के जो अंत हैं उनकी वो सेवा कर रहे हैं। इस तरह से जितने भी सारे के सारे वैदिक श्रुतियां आपके चरणों का गुणगान कर रहे हैं, जितने भी योगी हैं, मुनिगण हैं और जितने भी मुक्त जीव हैं, वो हरिनाम प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए मैं पूर्ण रूप से आपकी शरण ग्रहण کرتا ہوں. تو ہم دیکھ سکتے ہیں اس سنسار میں بھی ہمیں جب کوئی بھی کسی وستو کا گیان پراپت کرنا ہے تو ہمیں شبد کے مادھیم پہ نربھر کرنا پڑتا ہے. شیئر مارکیٹ میں جاتے ہیں, اس شیئر کا کیا پرائز چل رہا ہے, کھیل کے میدان میں کرکٹ میں کیا اسکور چل رہا ہے, ودیالے میں جاتے ہیں ادھیاپک بول رہا ہے, ششیہ سن رہا ہے, چھاتر سن رہا ہے, تو ہر جگہ شبد مادھیم ہے نا. لیکن جو یہ بھوتک شبد ہے یہ شاشوت نہیں ہے. بھوتک شبد ونی شاشوت نہیں ہے, یہ دیویہ شبد ونی ہے. دیویہ شبد ونی شاشوت ہے, اور جو دیویہ شبد ہے یہ اپنے سوتر سے ابھن ہے نا. شری پربھا ادھارن دیتے ہیں کہ ایک بدھ جیو ہے, بدھ جیو اپنے نام سے الگ ہے کیونکہ بدھ جیو ادوائت نہیں ہے, اس کا شریر الگ ہے اور آتما الگ ہے نا. ہم کسی کے نام کو پکاریں گے تو کیول نام لینے سے وہ ویکتی وہاں پرکٹ نہیں ہو جائے گا, کہ اس کا نام نامی میں انتر ہے, اس کے شریر اور آتما میں انتر ہے. لیکن بھگوان کیا ہے, ادویتم اچوتم انادی انت روپم, ادویت ہیں, ان کے شریر اور آتما میں کوئی انتر نہیں ہے. تو جیسے ہم ہرے کرشن 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 ہرے ہرے, ہرے رام 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 ہرے ہرے, جیسے ہرے کرشن مہامنتر لے رہے ہیں ہم سوئم کرشن کا سنگ کر رہے ہیں, کرشن وہاں پہ پرکٹ ہو رہے ہیں. اس کو سمجھنے کا ایک اور طریقہ ہے, یہاں پہ شیو جی کہہ رہے ہیں کہ بہیرنت آتما نے, کہ بھگوان سرو ویاپک ہیں, اندر بھی ہیں اور باہر بھی ہیں. بھگوان نے گیتا میں بھی کہا ہے کہ مایا تتم ادم سروم جگت اویکت مورتی نا, اویکت روپ سے میں سب جگہ ویاپت ہوں. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے پدم پوران میں, یتر گائنتی مد بھکتا تتر تشٹھا مینارد, کہ جہاں جہاں میرے بھگوان میرے بھکت میرا گنگان کرتے ہیں میں وہیں پہ رہتا ہوں. تو اس کو ہم اس ڈھنگ سے سمجھ سکتے ہیں کہ بھگوان گیتا میں کہہ رہے ہیں سروتا شروتی مد لوکے, کہ ہر جگہ میں سروتا پڑی پادم, ہر جگہ میرے پیر ہیں, ہر جگہ میری آنکھیں, ہر جگہ میرے کان ہیں. تو جہاں بھی بھکت لوگ پریم اور بھکتی سے ہرے کرشنا 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 ہرے ہرے, ہرے رام 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 ہرے ہرے, پریم اور بھکتی سے اگر بھگوان کا نام دیں گے تو بھگوان وہاں پرکٹ ہو جاتے ہیں. کوئی بھگوان کے کان سب جگہ ہیں اور یہاں پہ سنتے ہیں ترنت پرکٹ ہو جاتے ہیں. اگر یہاں پہ ہم کسی ایک ویکتی کا نام لیں جو کہ اس سمے یہاں پہ نہ ہو اور کہیں بامبے میں ہو تو وہ ہمارے سامنے پرکٹ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے کان سب جگہ وہ سب ویاپک نہیں ہے. لیکن بھگوان سرو ویاپک ہے اور بھگوان اپنے بھکتوں سے سمپرک ستھاپت کر لیتے ہیں. شری وشنا چکرتی ٹھاکر پاد اس کا ایک ادھارن دیتے ہیں کہ جس طرح سے لکڑی کے اندر اگنی رہتی ہی رہتی ہے لیکن اپنے آپ وہ اگنی نہیں جلتی, اس کو اگنی دکھانی پڑتی ہے, اسی ڈھنگ سے بھگوان سرو ویاپک ہیں. بھگوان پرکٹ کیسے ہوتے ہیں, جیسے بھگوانوں کا نام لیں گے بھگوان پرکٹ ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب پرہلاد مہاراج اپنی ماں کے گھر میں تھے تو انہوں نے اپنے گرو نارد منی سے سندیش سنا, انہوں نے اپنے گرو کے درشن تک بھی نہیں کیے, کیول بھاگوتم کا سندیش سنا. اور نارد منی یہ سندیش دیا تھا کہ ہمیشہ کرشن کا بھجن کرو, ہمارے ہمیشہ کرشن کے نام کا پرچار کرو. اسی آگیا کا پالن پرہلاد مہاراج کرتے رہے, اور پھر کیونکہ وہ ہمیشہ کرشن کا نام لے رہے تھے تبھی کھمبے سے نرسنگھ بھگوان پرکٹ ہوئے. تو یہ ہے ہری نام میں شکتی. بتایا گیا ہے کہ اس بھگوان نام کے دوارا ہم اپنے جیون کے پرم لکش کو پراپت کر سکتے ہیں. جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ کوئی بھی ہم نے بھوتک وستو کے وشے میں بھی جاننا ہے تو ہمیں شبد دھونی پہ نربھر کرنا پڑتا ہے. تو یہ دیویہ بھگوان کے وشے میں بھی جاننے کے لیے ہمیں کیول شبد مادھیم ہے, شبد برہم ایک مادھیم ہے جس کے دوارا ہم بھگوان کو پراپت کر سکتے ہیں. ایک بار ادویتا آچاریہ جی شیواس آنگن میں آئے اور وہاں پہ چیتنیہ مہاپربھو بھی تھے, تو انہوں نے چیتنیہ مہاپربھو کا بہت گنگان کیا تو مہاپربھو ان سے پرسن ہوئے اور مہاپربھو نے اپنے چرن کمل ان کے شیرش پہ رکھے. اور پھر مہاپربھو نے کہا کہ میں تمہارے کارن ہی اس جگت میں پرکٹ ہوا ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں گھر گھر جا کے ہری نام کا پرچار کروں گا اور میں ایسی بھکتی کا وترن کروں گا جس کو پانے کے لیے سوئم شیو جی اور برہما جی کو گھور تپسیا کرنی پڑے گی. تو کیا انہوں نے پرچار کیا, گھر گھر جا کے انہوں نے ہری نام دیا. گھر گھر جا کر چھوڑو, وہ تو جھارکھنڈ کے جنگل سے گزر رہے تھے
पशुओं को भी उन्होंने हरि नाम दे दिया। जब वो झारखंड के जंगल से गुजर रहे थे तो वो स्नान कर रहे थे गंगा में, तो नदी में स्नान कर रहे थे, क्षमा करे, तो सारे के सारे हाथियों का झुंड वहां पर आ गया। तो जब हाथियों का झुंड आ गया वहां पे, तो चैतन्य महाप्रभु ने पानी लिया और एक हाथी के ऊपर फेंका, बोले बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण। तो हाथी हूं करके फुंकारा उसने, और सारे के सारे हाथी कृष्णा कृष्णा करके चिल्ला रहे हैं। और उसके बाद वो जब बाहर आए तो एक शेर सोया पड़ा था, शेर को उन्होंने लात मारी, बोला बोलो कृष्णा बोलो कृष्णा, और शेर भी उठ खड़ा हुआ और नाचने लगा कृष्णा कृष्णा कहकर। और वहां का दृश्य इतना मधुर हो गया कि शेर और खरगोश आपस में गले मिल रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, एक दूसरे को चूम रहे हैं, कहां ऐसा संभव है, और सबके सब उन्मत्त हो गए हैं कृष्ण प्रेम में। तो ये हरि नाम की शक्ति। हम कह सकते हैं कि हमारे में तो इतनी शक्ति नहीं है और हम ये कर भी नहीं सकते, हम तो शेर तो क्या, बार हमारा जो पपी है उसको भी उसको हम प्रयास करते रहे तभी उठ के वो नाचेगा नहीं, जैसे हम उसको प्रसाद खिला सकते हैं और उसको हरि नाम दे सकते हैं, हमारे में इतनी शुद्धता नहीं है। लेकिन शिला प्रभुपाद में ये शुद्धता थी। शिला प्रभुपाद जब विदेशों में गए तो शिला प्रभुपाद ने बोला कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड के पशुओं को हरि नाम दिया, तो मैंने भी पशु तुल्य व्यक्तियों को ये हरि नाम दिया है। तो हिप्पी सब पशु तुल्य ही थे, तो उनको भी उन्होंने कृष्ण प्रेम में पागल कर दिया और सबको कृष्ण प्रेम बांटा। तो इस हरि नाम में इतनी शक्ति है कि अगर हम इसको ध्यान पूर्वक जब भी ना करें तब भी ये हमारा उद्धार कर देगा और हमारे पापों के पहाड़ को मुक्त कर देगा। ये स्तुति रूप गोस्वामी जी दूसरे नाम अष्टकम में कर रहे हैं, आप सुनिए। जय नाम धेया मुनि वृंद गेय हे जन रंजनाया परमक्षिका कृते त्वम आनंदादपि मानदम अनादरादपि मानागुदीरताम निखिलोग्र तापतलिम विपुमलांशे। कि हे हरि नाम आपकी जय हो, जो कि बड़े बड़े ऋषियों ने आपको गाया है, और केवल जीवों की प्रसन्नता के लिए ही आपने ये शब्द ध्वनि का रूप ग्रहण किया है। अगर आप कोई भी व्यक्ति आपका एक बारी भी नाम जप कर लेता है, त्वम अनादार अपि मानक उदीरता, अनादर से भी, यानी कि हरि नाम का केवल आदर पूर्वक जप करेंगे तभी हमें इसका फल प्राप्त हो रहा है, अनादर से भी अगर एक व्यक्ति ने एक बारी भी आपका नाम का जप कर लिया है तो आप क्या कर लोगे, निखिलोग्र तापतिलाम विपुलांशी, कि जितने भी जितने उसके ताप हैं उसके दुख हैं, पहाड़ों के पहाड़ ऐसे दुखों के पहाड़ों को जो कि उसके पापों के कारण है, उसको आप खत्म कर दोगे। ये इतना महत्व है, ये देखिए भगवान की कितनी कृपा है, कितनी कृपा है। बताया गया है उपनिषदों में, ना तत् चक्षु गच्छति ना वाक ना मना, भगवान इस भौतिक जगत से परे हैं, ना हमारी आंखें जा सकती हैं, ना वाणी जा सकता है, ना मन के द्वारा मन का चिंतन कर सकते हैं। वही भगवान दिव्य शब्द ध्वनि के रूप में अवतरित हुए हैं, कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, और उन कृष्ण नाम का हमने अनादर पूर्वक एक बारी भी बोल दिया, हरे कृष्ण कह दिया, कृष्ण कह दिया, तो हमारे पापों के पहाड़ और कितने कितने दुख हैं वो सब खत्म कर दिए जाते हैं। तो भगवान की इसी महिमा को देखकर, इसी कृपा को देखकर यहां पे भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं पुनः पुनः आपको नमस्कार करता हूं। हमें भी भगवान की इस कृपा को समझना चाहिए कि कितनी बड़ी कृपा है, हमें बार बार इस भगवान को नमस्कार करना चाहिए, गुरुजनों को नमस्कार करना चाहिए जिनके माध्यम से हमें हरि नाम प्राप्त हुआ, बार बार नमस्कार करना चाहिए। क्या देखिए तुच्छ जीव है, हमारा भौतिक अस्तित्व पता नहीं कब से चल रहा है और कितने 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 पाप हमारे इकट्ठे हो गए हैं, हर क्षण हम पाप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हरि नाम इतने कृपालु हैं, एक नाम भी ले लिया अनादर पूर्वक भी मजाक उड़ाते हुए भी, हमारे कई पापों के सारे पापों का पहाड़ मुक्त हो जाता है। और यहाँ पर आगे नाम अष्टकम में रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये जो हरि नाम के द्वारा हमें फल प्राप्त होता है, जो सारे के सारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है, ये उन ज्ञानियों को भी प्राप्त नहीं होता जिन्होंने ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर लिया है। इसकी महिमा इतनी महान है। तो कलयुग में अगर हम ध्यान रूप नाम भी जप नहीं कर पा रहे, नामाभास के आधार पर भी हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। शुद्ध नाम की तो बात छोड़ो, केवल नाम का आभास भी हो गया तो इस भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएंगे। तो ये हरि नाम की कृपा है। और ये हरि नाम प्रभु, हरि नाम प्रभु जो है कृष्ण से अभिन्न है, इनका एक व्यक्तित्व है, चैतन्य रस विग्रह, ये रूप है इनका, इनके साथ हमारा आदान प्रदान होता है। हम जब कह रहे हैं हरिनाम प्रभु की शरण ग्रहण करना, तो हरिनाम प्रभु हैं, उनकी हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो हम सबको ये जो दिव्य ध्वनि प्राप्त हुई है, ये गुरु के माध्यम से प्राप्त हुई है। गुरु एक ट्रांसमीटर हैं, जो कि आध्यात्मिक शब्द ध्वनि को इस भौतिक जगत में ट्रांसमिट करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इस भौतिक जगत में भी अमेरिका में कुछ खेल चल रहे हैं, तो वो ट्रांसमिट होता है इस भारत में, हम यहीं बैठे बैठे इनको देख सकते हैं। इसी ढंग से गुरु निरंतर आध्यात्मिक जगत के संपर्क में रहते हैं और वो आध्यात्मिक शब्द ध्वनि हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। गुरु वो माध्यम है। तो देखिए, सिग्नल बहुत स्ट्रांग है, ट्रांसमीटर बहुत स्ट्रांग है, कमजोरी कहां पे है? रिसीवर में। एंटीना कमजोर है। सब कुछ होते हुए भी हमारे अंदर कोई परिवर्तन हमें लगता हुआ ही नहीं है, किए जा रहे हरि नाम, कोई रुचि उत्पन्न नहीं है। सिग्नल बहुत स्ट्रांग है, ट्रांसमीटर भी स्ट्रांग है, लेकिन इस रिसीवर को हमने ठीक करना पड़ेगा। तो इस रिसीवर के अंदर जो सिग्नल में डिस्टॉर्शन लाता है वो क्या है, कहां से हमारे डिस्टॉर्शन आते हैं? हमारे अनर्थ, हमारा मन जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, तो उस कारण से हम इस सिग्नल को सही ढंग से प्राप्त नहीं कर पाते। भक्ति सांसद ठाकुर महाराज कहते हैं कि चैंटिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कृष्ण सेवा। कृष्ण सेवा, जीवन स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, हम सब कृष्ण के नित्य दास हैं। तो कृष्ण को, हमें दास को जानना चाहिए कि हमारे मालिक कृष्ण को सबसे उत्तम सेवा कौन सी लगती है, वो है चैंटिंग। तो इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, गोलोक धाम में भी यही हो रहा है, चैंटिंग हो रही है। ये मत सोचिए कि यहां तो किसी ढंग से मेहनत कर लूंगा सोलह माला का, जब एक बारी धाम चला जाऊं फिर देखूंगा, मुड़ के नहीं देखूंगा इसकी तरफ। हमारे कुछ भक्त हैं, बोलते हैं चौथा ताप है ये, तीन क्लेश तो होते हैं ना, अधिभौतिक, अध्यात्मिक, अधिदैविक, बोले चौथा क्लेश कहां से आ गया, ये होता ही नहीं, पूरा घसीट घसीट के घसीट घसीट के आंखों में आंसू आ जाते हैं, कब खत्म होगा, प्रेम के कारण नहीं आ रहा। तो कह रहे एक बार ये मेहनत कर लूं, किसी ढंग से मुक्त हो गया फिर देखूंगा मैंने इसकी तरफ मुड़ के, ऐसा नहीं है। वहां पे भी यही शब्द ध्वनि, यही कीर्तन चल रहा है, ये हमारा फैमिली सॉन्ग है, सब मिलकर यही गाते रहते हैं, कृष्ण भी यही गा रहे हैं, गोपियां भी यही गा रहे हैं, ग्वालवाल भी यही खा रहे हैं, ये गाना चलता जा रहा है वहां पे। तो सबसे उत्तम सेवा कृष्ण सेवा है ये चैंटिंग। इसीलिए श्री प्रभुपाद ने क्या कहा कि जितने भी शिष्यों को मैंने आज्ञाएं दी हैं, सबसे सर्वोत्तम आज्ञा है कि सोलह माला का ध्यान पूर्वक जप। केवल इसी के द्वारा हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। हम लोग ना वनों में जा सकते हैं, ना बड़े बड़े यज्ञ कर सकते हैं, ना कोई ध्यान लगा सकते हैं, और कुछ संभव तो है नहीं। हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, उसको भी हम टूटे फूटे ढंग से लें तो कैसे हमारा भौतिक जगत से छुटकारा होगा। तो पूरा ध्यान देना है, क्योंकि जब श्री प्रभुपाद यहां तात्पर्य में बता रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम सभी भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं के विषय में ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। कई बार जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे होते हैं तो तरह तरह की समस्याएं हमारे मन में चल रही होती है, तरह तरह की समस्याएं, व्यवसाय की समस्याएं, घरेलू समस्याएं, कुछ संबंध खराब हो गए किसी के साथ उसकी समस्याएं, तरह तरह की पीड़ा अंदर चल रही होती है और ध्यान नहीं लग रहा होता, लेकिन सभी समस्याओं का समाधान ये ध्यान पूर्वक जप करना है, और कोई समाधान नहीं है। और इसे ध्यान पूर्वक जप को करते करते जब हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो ये भक्ति लता जो बीज है इसका पोषण होगा, और जब ये पोषण होगा तो ये विकसित करते हुए पूरे ब्रह्मांड को भेदते हुए विरजा नदी से होते हुए कहां जाएगी, परम व्योम राधा कृष्ण के चरणों में। यह हरिनाम इतना महान है कि पद्म पुराण के सृष्टि खंड में वर्णन आता है कि स्वयं गायत्री मंत्र वो एक गोपी बन जाते हैं और राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। तो एक गायत्री मंत्र भी हरे कृष्ण महामंत्र की सेवा करता है। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र में सारे मंत्र सम्मिलित हैं, और किसी मंत्र के उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हरे नाम एव केवलम, बस केवल ध्यान पूर्वक जप करना है। इसी हरि नाम में भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की क्रियाएं, भगवान की लीलाएं सब छुपे हैं। इसी रूप से इसमें बता रहे हैं नाम अष्टकम में कि जब कोई शुद्ध नाम ले लेता है तो कैसे उनके सामने भगवान का रूप प्रकट होता है। इसमें लिखा है सुधिश्रते जनारती रस्य रम्य चित घन सुख स्वरूपिने नाम गोकुल महत सेवायते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। क्या है कि ओ हरि नाम, आप तो अपने शनागत भक्त के सारे दुखों को दूर कर देते हैं और आप अपने दिव्य रूप में बहुत ही जिसे कहते हैं सुख स्वरूप ने रम्या चित घना बहुत ही घना जिसे कहते हैं इनका आनंद है। रम्या चित घना छोटा मोटा आनंद नहीं है, बहुत घना इनका आनंद है। और गोकुल निवासियों को आप अविरल आनंद और अविरल जिसे कहते हैं उत्सवी उत्सव देने वाले हैं और आप हमेशा अपनी मधुरता में स्थित रहते हैं। और फिर क्या होता है कि यही हरि नाम हमारे सामने वपुषे कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः कि ऐसे कृष्ण जिनका शरीर पूर्ण रूप से दिव्य है उसका हम दर्शन कर पाएंगे। तो इस हरि नाम जब हम शुद्ध नाम लेते हैं तो भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं हमारे सामने प्रकट होती हैं। तो इस पूरे माध्यम में जो हरि नाम का हमें गुरु के माध्यम से मिला है इस पे हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। ये जो दिव्य शब्द ध्वनि है ये हम सब भक्तों के ऊपर इतनी विशेष कृपा है, एक तो हरि नाम के द्वारा हमको प्राप्त होती है और दूसरा दिव्य शब्द ध्वनि कैसे प्रकट होती है हमारे सामने एक तो हरि नाम के द्वारा, और भी दिव्य शब्द ध्वनि का और कोई भी कारण है प्रकट होने का, और कोई भी रूप है? हाँ, भागवत नित्यम भागवत सेविया, ये जो प्रतिदिन भागवत का कक्षा होती है ये भी दिव्य शब्द ध्वनि है, उसको हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। रवि बोला कि नित्यम भागवत सेविया, क्योंकि जैसे कि हमारे पास एक स्लाइड शो है आपको भी दिखाएंगे विमला प्रसाद प्रभु जी केशव जी ने तैयार किया उसको। एक जापान के एक डॉक्टर थे वैज्ञानिक, उन्होंने आविष्कार किया, क्या आविष्कार किया कि एक वो डैम के पास गए, बांध के पास, और वहां जाकर उन्होंने गंदी गंदी गालियां निकाली और अपशब्द बोले और फिर उस पानी की फोटो खींच ली और उस पानी के मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल्स को देखा गया बहुत ही विकृत रूप में, गंदे गंदे उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं कुछ नहीं, बहुत ही विकृत रूप में वो पानी के जो क्रिस्टल थे वो स्थित थे। फिर उन्होंने वही डैम में खड़े होकर उन्होंने संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण किया और फिर फोटो ली और फिर जब फोटो ली तो देखा कि जो पानी के जो क्रिस्टल थे बिल्कुल सुंदर सुसज्जित रूप में थे। तो इससे मालूम चलता है कि शब्द ध्वनि का कितना असर पड़ता है। आप खुद देख लीजिए, अगर हमारे कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां लड़ाइयां हो रही हैं और जहां पे एक दूसरे को गाली गलौच हो रहा है तो हमारा भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हम भी क्रोधित हो जाएंगे, हमारे अंदर विकार आना शुरू हो जाएगा। हम मंदिर में आते हैं तो मंदिर में दिव्य शब्द ध्वनि होती है तो हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। तो इसका तो क्योंकि आज के कलयुग में प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया जाता है इसलिए वो पानी की फोटो खींचकर वो क्रिस्टल की फोटो दिखाई जाती है, अब तो मान जाओ साफ साफ दिखाई दे रहा है। और फिर उन्होंने ये बोला, इतनी सुंदर बात बोली कि हमारे शरीर के अंदर कितने प्रतिशत पानी होता है? 65%, 65% पानी होता है। तो अगर उस पानी के सामने गलत गंदी गंदी गालियां दी गई तो उसके पानी का क्या हाल हुआ? विकृत रूप में आ गया। और सुंदर सुंदर दिव्य श्लोकों का उच्चारण किया गया तो सुसज्जित हो गया। इसी ढंग से अगर हम अपने आप को दिव्य शब्द ध्वनि में रखते हैं तो भौतिक आध्यात्मिक लाभ तो होंगे ही होंगे, भौतिक लाभ भी होंगे। इसलिए देखा जाता है कि जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छे ढंग से जप कर रहे हैं, लोग बोलते हैं हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया और ये सब ठीक हो गया, सब बीमारियां दूर हो गई, क्योंकि दिव्य शब्द ध्वनि का असर है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि वासुदेवा पराजति, कि कृष्ण ही परम लक्ष्य है और कृष्ण परम लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं इन्हीं दिव्य शब्द ध्वनि के माध्यम से। एक बार श्री प्रभुपाद से एक वैज्ञानिक डॉक्टर बेनफोर्ड ने पूछा, ये वार्तालाप आती है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में, तो डॉक्टर बेनफोर्ड ने पूछा कि आपका क्या होगा आपका और आपके शिष्यों का, आप लोगों का क्या होगा? तो प्रभुपाद बड़े कॉन्फिडेंटली बोले, वी आर गोइंग बैक टू गॉडहेड, हम तो वापस जा रहे हैं कृष्ण के धाम। तो प्रभुपाद ने ऐसा नहीं बोल दिया कि भावुकता से उनको हराने के लिए ऐसा बोल दिया, वी आर गोइंग टू बैक टू गॉडहेड, हम वापस धाम जा रहे हैं। क्यों? कहते हैं क्योंकि हमें मालूम है कृष्ण का नाम, कृष्ण का पता, उनका एड्रेस, उनकी लीलाएं, उनका घर, हमें सब कुछ मालूम है। भगवान गीता में कह गए हैं, जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं योगेती तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्धर्मा नायति मामे दिशा अर्जुन, कि जो मेरे जन्म कर्मों की दिव्यता को समझ जाएगा वो सीधा मेरे धाम आ जाएगा। तो केवल हरि नाम के माध्यम से ही हम भगवान के जन्म और कर्मों की दिव्यता को समझ सकते हैं। तो ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इतने कॉन्फिडेंट प्रभुपाद ने बोला कि हम तो जा रहे हैं भगवत धाम वापिस, क्योंकि हमें मालूम है कि भगवान का एड्रेस क्या है, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान का नाम क्या है। एक बार प्रभुपाद से किसी इंटरव्यू में किसी से पूछा जा रहा था कि क्रिश्चियनिटी में भी कहा गया है कि दाउ शैल चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, कि भगवान के नाम का उच्चारण करो, है ना। लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है, उनको यही नहीं मालूम भगवान का नाम क्या है, उन्हें बाइबल में भगवान का नाम नहीं लिखा, तो किसका उच्चारण करें? जीसस क्राइस्ट का नाम है, वो तो भगवान के पुत्र का नाम है, अब उनको मालूम ही नहीं, और लिखा हुआ दाउ शैल चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, ये भगवान के नाम का उच्चारण करो। तो प्रभुपाद कहते हैं भाई आपको मालूम नहीं है भगवान के नाम का उच्चारण करो, आपको मालूम नहीं भगवान का नाम क्या है, तो हम बता रहे हैं ना कृष्ण है तो ले लो कृष्ण का नाम क्या समस्या है? तो देखिए कितनी महान हम वैदिक संस्कृति कितनी महान है। उन्होंने कहा कि भगवान जीसस क्राइस्ट ने आपको भगवान का नाम इसलिए नहीं बताया, उन्होंने बता दिया है कि मैं आप लोगों को पूर्ण ज्ञान नहीं दे रहा हूं, अभी आप पूर्ण ज्ञान पाने के योग्य नहीं है। तो भगवान का नाम है कृष्ण, उसका नाम लो। तो हमको मालूम है कृष्ण का नाम कहाँ क्या है, कृष्ण का रूप कैसा है, कृष्ण की लीलाएं कैसी हैं, कृष्ण कहाँ रहते हैं, ये सब केवल इस शब्द ध्वनि के द्वारा मालूम चलेगा। जैसे कि यहां से किसी को अमेरिका भी जाना है तो शब्द ध्वनि के माध्यम से वो मालूम करता है कैसे है, कहाँ रहूंगा, किधर रहूंगा, सब शब्द ध्वनि के माध्यम से। इसी ढंग से हमारा लक्ष्य है कृष्ण के लोक में जाना, तो केवल शब्द ध्वनि के माध्यम से हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी शब्द ध्वनि के माध्यम से हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं कि इस शब्द ध्वनि का हम निरंतर उच्चारण करते रहे, इसका केवल एक ही उपाय है कि हम निरंतर वैष्णव सेवा में जुड़े। जितनी हम वैष्णव सेवा करेंगे उतना हमारा नाम के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। वैष्णव सेवा एक माध्यम है नाम के प्रति रुचि उत्पन्न करने का। अगर हम वैष्णव के प्रति सेवा नहीं कर रहे, वैष्णवों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर हरि नाम हमारी जीवा पर प्रकट नहीं होगा। रूप गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं हरि नाम से कि आप मेरी जीवा पर आकर नाचिए। वो तभी नाचेंगे हरि नाम हमारी जीवा पर जब हम वैष्णवों के साथ मधुर संबंध स्थापित कर पाएंगे, द्वेष रहित होकर प्रेम पूर्वक संबंध स्थापित करेंगे, तभी हरि नाम के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। तभी शब्द ध्वनि के माध्यम से हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को समझ पाएंगे। तो इस सारा के सारे इस विज्ञान को हमने बहुत सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करना चाहिए, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्ण। इसलिए कोई प्रश्न या टिप्पणी? नहीं नहीं, इसको ऐसा मत समझिए कि जो गाय दूध नहीं देती उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं कहा गया। ये फल की बात बताई गई है कि शब्द बड़े निष्णातम ना निष्णात परे, यदि सारे वैदिक शास्त्र पढ़ लिए लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, तो ये वैसे ही हुआ, श्रम हो गया। उस गाय की आप सेवा करते रहे दूध नहीं देती, ऐसा नहीं कहा कि उस गाय की सेवा नहीं करनी चाहिए, उसको मार देना चाहिए। उदाहरण उसी ढंग से है कि आपने जो परिश्रम किया उसका क्या फल मिला आपको? कोई फल नहीं मिला। ये उदाहरण उसके लिए दिया गया है ना, उसका मतलब ये नहीं कि सेवा नहीं करनी चाहिए, गाय की तो बहुत महिमा है ही है। हाँ भाई,
पापों के मतलब कई पहाड़ मतलब या सारे पाप
اس میں لکھا ہے
پرسن
چینٹس یور نیم ایون ونس اینڈ دیر از یو ٹو ایون دین یو کمپلیٹلی ڈسٹروائے دا مونسٹرس ماؤنٹین آف سن کمپلیٹلی کمپلیٹلی اس میں اگلے میں اس میں لکھا ہوا ہے نام اشٹکم میں کہ یہ برہم ساکشات کرتی نشٹیاپی وناشم ایتی ونانا بھوگی اپیتی نام سپرتین تتے پرادھان کرمیتی ویروتی ویدا کہ ایک ویکتی برہم میں پرویش کر سکتا ہے بہت تپسیا کر کے دھیان لے کے پھر بھی وہ اپنے تارت کرموں کو پورن روپ سے مکت نہیں کر پایا لکھا ہوا اور ان کو پھر تبھی برہم ان کو اپنے ان تارت کرموں کو پورا کرنے کے لیے دکھ اور سکھ سہن کرنے کے لیے نیچے آنا پڑے گا اتنی مہیما ہوتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ پنیہ کرموں کا سنچے کر کے ہی ہم بھکتی میں آتے ہیں تو کرشنا کانشیس میں آنے کے بعد پھر ہمیں پنیہ کرم دیکھیے جب ہم پنیہ کرم کر رہے تھے تو ہمیں لکش نہیں معلوم تھا اب جب لکش معلوم چل گیا ہے پھر کیول سر دھرما پریتیا ماں میں کم شرن میں آئے پھر کیول میری شرن میں آئے تو پھر ہم اپنے 100% جو ہماری شکتیاں ہیں وہ کیول کرشن کی بھکتی کے لیے ہونی چاہیے جب معلوم چل گیا کرشن لکش ہیں تو پھر کیوں ہم ادھر ادھر دھیان وہ کریں جب تک لکش نہیں معلوم تو ہم کر رہے ہیں پنڈت ہمارے سکرتی اکٹھی ہو رہی ہے یہاں پہ جو پنیہ کرم ہے اس کا ارتھ کیول کرم کانڈ ہی نہیں ہے پنیہ کرم ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں ٹاپک ہے اس کو تو کیول پنیہ کرم کیول یہی نہیں ہے کہ کرم کانڈ کرتے 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 کوئی کرشن کا سنگ پراپت کر لے گا ایسا ارتھ نہیں ہے کرم کانڈ کے مادھیم سے ہم کرشن کو پراپت نہیں کر سکتے کیول بھکتی کے مادھیم سے ہم کرشن کو پراپت کر سکتے ہیں اناؤ بات سے مکتی مل سکتی ہے ناؤ بات سے مکتی مل سکتی ہے شدھ رام سے پریم ملے گا نوا بھاس سے شدھ نام نام اپرادھ سے نوا بھاس یہ سارے کے سارے جو سٹیجز پڑھنے کیول ہری نام سے کوئی لفٹ اور کوئی نہیں ہے کوئی شارٹ کٹ اور کوئی نہیں ہے یہی شارٹ کٹ ہے دھیان پوروک جپ اور ویشنو سے جائے ایسے ہوگا بھی نہیں کیونکہ جو ویکتی پاپ کر رہا ہے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ میں پلاننگ کر کے چلوں اور پھر لاسٹ میں کبھی بھی ہری نام لے لوں ایسا نہیں ہری نام بھی ہماری جیوا پہ آتا ہے یہ وشیش کرپا سے آتا ہے یا جیوا اگر برتتے نام تو جس کی جیوا پہ ہری نام آتا ہے کوئی سادھارن ویکتی نہیں ہے سادھارن ویکتی کے جیوا پہ نام نہیں آئے گا ہری نام ہم اپنی اچھا سے ہری نام نہیں لے پا رہے ہیں اپنی شکتی سے ہم ہری نام نہیں لے پا رہے ہیں اپنی پلاننگ سے یوجناؤں سے ہری نام نہیں لے پا رہے ہیں یہ کیول جو
جس نے یہ سوچا کہ میں سارے پاپ کر لوں اور بعد میں ہری نام لے لوں تو اس کی تو
کیوں نہیں ہری نام کا پھر بھی فائدہ ہوگا اگر وہ کسی بھی ڈھنگ سے لے لے یہ ان کے ان پرکار ہیں اس کو سنائی بھی دے جاتا ہے کیوں نہیں ہوگا پاپ پھر بھی دور ہوگا لیکن کوئی پلاننگ کر کے نام کے بل پر پاپ کر رہا ہے ہاں وہ نہیں ہوگا ہر آدھیاتمک وستو جو ہے وہ پرم تھراتا پہ ایبسلوٹ لیول پہ ہے ہاں شدھ بھکت اور شدھ بھکت کے نام میں بھی کوئی انتر نہیں ہے ہم پربھوپاد کہیں بھی کہتے ہیں تو ہمارے اندر ایک شکتی کا سنچالن ہو جاتا ہے نا ہاں شدھ بھکت کے سمرن ماتر سے ہی ہمارے پاپ کرنے کی پرورتی سماپت ہو جاتی ہے سولہ میں کم کہا تھا سو بھی نہیں کہا تھا میرے خیال سے میں کہ میرے جیسے سو لوگ بھی ہوں تو میں پورے کرشن کو کرشن بھاوت کروں گا پربھوپاد اٹھارہ کچھ کم لوگ سو سے بھی کم لوگ تھے یس پربھوپاد بالکل ادھار ہو گیا شیلا پربھوپاد پڑھ لیا شیلا پربھوپاد بول دیا سن لیا ادھار ہو گیا تو ہم لوگ جن کا جنم بھارت میں ہوا ہے بہت بھاگیہ شالی ہیں رام کرشن سنتے ہی رہتے ہیں ہم تو کانوں میں پڑھتا ہی رہتا ہے تو بہت سکرتیاں اکٹھی ہوتی ہیں آپ سب کا بہت بہت دھنیہ واد گرتھا شریمد بھاگوتم کے گرتھا شری چیتنیہ چرتا امرت کے ہری نام پربھو کے ہری نام سنکیرتن یگیہ کی جگت گرو شیلا پربھوپاد مہاراج کی انند کوٹی ویشنو وند کی نتائے گوتری ونندے